ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से बस मार्शलों के लिए उचित नीति बनाने की अपील की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 नवंबर या उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना शुरू करने की अनुमति दी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन ईगल के अंतर्गत अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। दीपावली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में दिल्ली पुलिस की असफलता पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की और दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से राजधानी में तैनात 10,000 बस मार्शलों के लिए उचित नीति बनाने की अपील की है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि चाहे इन मार्शलों की बहाली हो या उन्हें स्थायी नौकरी पर रखा जाए, उन सबकी पूरी तनख्वाह का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का निर्माण जल्द होना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि बसों में बस मार्शल के रहने से महिलाओं के विरुद्ध अभद्र व्यवहार में कमी आती है, जिससे वे और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं।
महिलाओं की सुरक्षा का मैटर है क्योंकि वो उनकी डोमेन में आता है, तो वो कृपया इस पे जल्द से जल्द एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाएं कि बस मार्शल्स को स्थायी तौर पे, परमानेंट तौर पे दिल्ली की हर बस में 2 शिफ्ट्स में रखा जा सके कि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित ना हो।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 26 नवंबर या उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना शुरू करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय को 1 सप्ताह के अंदर ये सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने उन सभी स्थलों की सफाई कर दी है जो चुनाव के दौरान गंदे किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों और दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि अगले बैच को विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा अच्छा और साफ सुथरा मिले। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बदरंग और गंदा किए जाने के मद्देनजर सितंबर में अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों के चुनाव की मतगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। अपर पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने मीडिया को बताया कि अपराध शाखा ने ऑपरेशन ईगल के अंतर्गत पिछले 3 महीने से लगातार हथियार तस्करों के रैके पर काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा गिरोह है और देश के विभिन्न राज्यों में हथियार सप्लाई करता था।
पिछले कुछ दिनों से हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी थी और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, तो ऑपरेशन ईगल के तहत हमने 18 एक्यूज गिरफ्तार किए हैं और इन 18 एक्यूज से तकरीबन 13 वेपन्स और 3 चाकू और 33 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। ये पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार कोशिश किए जा रहे थे और एक के बाद एक जो गन रनिंग रैकेट्स हैं उस पे काम कर रहे थे, और जैसे ही हमारे को पुख्ता लीड मिलती थी हम लोग रेड करते थे, अरेस्ट करते थे और रिकवरी होती थी।
दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय ने आज निगम के अधिकारियों के साथ स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्यों और परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डॉ. ओबराय ने अधिकारियों को शहर के सभी 12 जोन के कार्यों और परियोजनाओं को अगले महीने के पहले सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी कार्यों की प्रतिदिन निगरानी होगी और कार्य समीक्षा रिपोर्ट महापौर को दी जाएगी। महापौर ने बताया कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विभिन्न सड़कों और गलियों के निर्माण की भी जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार नागरिकों का बुनियादी अधिकार है और कोई भी धर्म प्रदूषण को प्रोत्साहन नहीं देता। न्यायमूर्ति अभय एस उका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। एक रिपोर्ट।
दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में असफल रहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। प्राधिकरणों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के लिए तुरंत कार्रवाई करने और प्रतिबंध पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया। पिछले सप्ताह न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण मांगा था कि वे पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में असफल क्यों रहे। अदालत का मानना था कि प्रत्येक वर्ष दिवाली से पहले प्रतिबंध की घोषणा की जाती है, लेकिन इसका मामूली या कुछ भी प्रभाव नहीं होता। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के प्रभावशाली कार्यकाल की कामना करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनका कार्यकाल भारत के लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने के साथ साथ देश में समानता बनाए रखेगा, साथ ही प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सशक्त बनाएगा। इस बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और अपार अनुभव ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की कानून व्यवस्था और संप्रभुता सदैव सुरक्षित और संरक्षित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से लवली निगम।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि राजधानी में पिछले वर्ष संक्रमण और परजीवियों से होने वाली बीमारियों से 21,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय हालत दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के आंकड़ों को रेखांकित करते हुए बताया कि शहर में दूषित पानी, मच्छरों और गंदगी के कारण यह मौतें हुई है। इसके अतिरिक्त कैंसर से मरने वालों की संख्या में पिछले एक साल में 12% का इजाफा हुआ है। श्री सक्सेना ने बताया कि इनमें 13% मृतक 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे। वहीं 57% मृतक कामकाजी आयु वर्ग से थे, जिनमें 6% लोग 14 से 24 आयु वर्ग के, 19% 25 से 44 और 32% लोग 45 से 64 आयु वर्ग के थे। उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि इन आंकड़ों में अस्पतालों के बाहर होने वाली मृत्यु के कारणों का विवरण शामिल नहीं है। उन्होंने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर स्थिति है, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल के अलावा शहर में पूर्ण रूप से जलापूर्ति, सीवर और स्वच्छता व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को दर्शाता है। उन्होंने आशा जताई कि दिल्ली सरकार इस स्थिति का संज्ञान लेकर केवल प्रचार के अलावा इसके निवारण का भी प्रयास करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, आकाशवाणी दिल्ली।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को राजधानी में लागू न करने का आरोप लगाया है। श्री गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए दिल्ली को 2,406 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस धन का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस राशि से दिल्ली में 1,139 जन स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, 11 जिलों में जांच प्रयोगशालाएं और कल्याण केंद्र बनाए जाने थे।
पहला 1139 जन स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बनने थे, पर 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई भारत सरकार द्वारा। दूसरा, 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 लैब स्थापित होनी थी, जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार के लैब टेस्ट आम आदमियों के लिए बनाई जानी थी। तीसरा, क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पतालों में ICU CCU बनाने के लिए, ये कुल इस पर 2406 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए।
दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना के वासुदेव घाट पर पहली बार बुधवार को 3.5 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव पर्व आयोजित करेगा। दिल्ली दीपोत्सव नामक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजधानी के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना होंगे और इसकी शुरुआत शाम 5:30 बजे से होगी। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि ये दिव्यता और भव्यता का एक अलौकिक उत्सव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वायु प्रदूषण का असर और बचाव पर चर्चा करेगा। सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर नीरज गुप्ता और वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सनवाल चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता वायु प्रदूषण के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011 2331444444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से 9289-094-044 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा रह सकता है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। सवेरे के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी के भारत मंडपम में आज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फैशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निफ्ट अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से निकले विद्यार्थी विश्वभर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। समारोह में निफ्ट के कांगड़ा, नई दिल्ली, रायबरेली और पंचकुला परिसरों के 1200 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम में निफ्ट के महानिदेशक तनु कपूर, निफ्ट की डीन प्रोफेसर डॉक्टर सुधा ढींगरा और वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विद्यार्थियों के परिजन भी उपस्थित थे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
डॉक्टर मुर्गुन ने कहा कि यह विश्व के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में से एक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष का मुख्य ध्यान युवा फिल्म निर्माताओं पर है। उन्होंने बताया कि नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ भारतीय नवोदित निर्देशक पुरस्कार भी शुरू किया गया है। श्री जाजू ने कहा कि इस साल का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है और महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की फिल्म बेटर मैन की एशिया प्रीमियर के साथ होगी। उन्होंने यह भी बताया कि सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को दिया जाएगा। श्री जाजू ने कहा कि इस वर्ष इस फिल्म महोत्सव में 101 देशों से 1676 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। महोत्सव के लिए 81 देशों की 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का चयन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए बाइक टैक्सी सेवा की आज शुरुआत की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार की बाइक टैक्सी सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इनमें महिलाओं के लिए समर्पित शी राइड्स और अन्य सभी यात्रियों के लिए राइडर सेवा शामिल है। यात्री दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप DMRC मूवमेंट्स दिल्ली सारथी 2.0 पर बाइक टैक्सी बुक करा सकेंगे। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने आज त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 4 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इनमें दिल्ली जंक्शन से कोलकाता आने जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 04050 और 04049 आरक्षित सुपरफास्ट त्योहार विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली जंक्शन से लखनऊ के बीच, रेलगाड़ी संख्या 04243 और 04244 शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से बस मार्शलों के लिए उचित नीति बनाने की अपील की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 नवंबर या उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना शुरू करने की अनुमति दी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन ईगल के अंतर्गत अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। दीपावली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में दिल्ली पुलिस की असफलता पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की और दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।